لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وهو رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين. عجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. 1442 هجرة، أيام عزا کی آج وہ مجلس ہے جو ہمارے یہاں تیسویں کی مجلس کہلاتی ہے، الاثر اسلامک سوسائٹی آف آسٹریلیا، میلبرن شہر. ایام عزا کی چاند رات سے مسلسل مجالس پڑھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، تو جو گفتگو آج ہے وہ بھی اسی کانٹیکس میں ہے، اگرچہ تقریباً دو ویک سے مجھے موقع نہیں ملا تھا اس ممبر پہ آنے کا، لیکن بات مجھے پہلی محرم سے بات چل رہی ہے چاند رات سے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے بہت مختصر سی چند گزارشات کرنا. البتہ یہ بھی یاد دلا دوں کہ آج کی اس مجلس کو ایک جانب تیسویں کی مجلس قرار دیا گیا ہے، عاشورے کو پورا ایک مہینہ ہو گیا، اور دوسری جانب جناب سکینہ علیہ السلام کی شہادت و وفات کی مجلس بھی آج ہی کی مجلس میں شامل ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہ گزارش کر دوں کہ ابھی حال ہی میں دو تین دن پہلے خطیب ممبر حسینی علامہ سید جاوید جعفری صاحب کا انتقال ہوا ہے، تو ایک طرح سے ان کا ایصال ثواب بھی اس مجلس کے آخر میں کیا جائے گا. اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ایک الگ سے مجلس اس حوالے سے پڑھوں. یہ جملہ میں نے اس لیے کہا کہ علامہ جاوید جعفری صاحب سے میرے بہت پرانے تعلقات تھے، اور جو ایک جوانی کا زمانہ ہوتا ہے وہ ہم لوگوں نے کراچی میں ایک ساتھ گزارا تھا، بلکہ کھاردر میں تو عجیب انداز کی مجالس ہم لوگوں نے پڑھی کہ آدھی مجلس میں پڑھتا تھا تو آدھی مجلس وہ آ کے مکمل کرتے تھے، اور پھر اگلے ہفتے مجلس آدھی وہ شروع کرتے تھے تو اختتام میں کرتا تھا. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اب اتنا وقت تو نہیں ہے کہ اس کے حوالے سے مزید کوئی بات کہی جائے. اور ایک آخری بات اور سن لیجیے، تاکہ آج کی مجلس کی چار مناسبتیں، اہم ترین تو پہلی دو ہیں، آخری ایک بات بھی سن لیجیے تاکہ یہ چار مناسبتیں جمع ہو جائیں. 9 صفر کا دن ختم ہوا ہے، شب 10 صفر، لیکن ابھی اسی ویک میں کیلیفورنیا سے رابطہ ہو رہا تھا، وہ کچھ آن لائن مجالس میری چاہ رہے تھے، اور جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا اسی ممبر پر کہ آن لائن مجالس میرے لیے ممکن نہیں ہوتی، مجھے یہ عزا خانے کا ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے، تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. تو اسی دوران انہوں نے بھی یہ تذکرہ کیا اور مجھے بھی یاد تھا. انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کو یاد ہے کہ آج سے 28 سال پہلے 8 صفر کی تاریخ تھی، اور آپ ہمارے گھر پہ گھر کی مجلس پڑھنے آئے تھے لاس اینجلس میں، اور مجلس ختم ہوئی تھی اور فوری طور پہ आपको जाना पड़ा था क्योंकि अचानक इत्तल आ गई थी। एक अजीम मर्जी हजरत आयतुल्लाह उज़्मा आगाए अबुल कासिम अल खुई का इंतकाल हो गया। ठीक 28 साल पहले की बात थी, तारीख मुझे भी याद थी, तारीख उनको भी याद थी, सिर्फ उन्होंने ये याद दहानी कराई कि आप हमारे घर की मजलिस में थे। मुझे ये भी याद था कि मैं वाका ने घर की मजलिस में था। शाम हो रही थी जब ये इत्तला आई, फिर फौरन मैं जाफरिया गया। उस जमाने में लॉस एंजलिस में एक ही इमामबाड़ा होता था, कुदई में जाफरिया। अब तो माशाल्लाह कई इमामबाड़े हो गए सारी दुनिया में। यही एक तरीका कार है कि शुरू में एक इमामबाड़ा होता है, फिर कई बनते चले जाते हैं। तो मरहूम आयतुल्लाह खुई तारीख शिया के अजीम तरीन मराजे में से एक, उनकी वफात की तारीख भी 8 सफर, यानी समझिए कल का दिन जो गुजरा। और उस साल अमेरिका में अंग्रेजी तारीख और इस्लामी तारीख साथ साथ चल रही थी, तो वो 8 अगस्त 1992। अच्छा, अब चूंकि मेरी आज के मजलिस का मौजू जो मेरे जहन में है उसमें आगा खुई मरहूम का एक वाकया मुझे वैसे ही बयान करना था अपने मौजू को वाज़ह करने के लिए, और फिर ये उनकी तारीख वफात और फिर ये 30वें की मजलिस, तो ये सारी चीजें जमा हो गई हैं। मैंने कहा पहले से वाजे कर दूं ताकि दौरान तकरीर अगर आप बहुत सारे मौजूआत सुने तो घबराए नहीं कि आज ये मौलाना को क्या हो गया। 30वां, हमारे यहां 30वां एक तरीका है ईसाले सवाब का। शरण तो मरने वाला मरा उसी वक्त से उसका ईसाले सवाब शुरू हो जाता है, फिर उसके अंदर उसकी नमाज वैशा से कबर भी आती है, जिसके बारे में मैं अर्ज कर चुका हूं और बार बार बयान करता हूं कि नमाज वैशा दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर सदका है। सदका न दे सको तो नमाज वैशा पढ़ो, और अगर दोनों काम करो तो क्या कहना। और एक जुमला है मराजे का कि मरने वाले के लिए नमाज वैशत भी एक तरह से सदके की हैसियत रखती है। और इसके बाद फिर मजीद इस जुमले की एक तशरीह है कि इसकी वजह से महाराजे ने कहा कि फिर यह मुमकिन है कि एक आदमी किसी मरने वाले की नमाज वैशत कई बार पढ़े, जिस तरह से आप किसी के लिए कई मरतबा सदका निकाल सकते हैं। एक लंबी फिकही बहस है जिसका आज तो बिल्कुल मौका नहीं। तो मरने वाले के लिए साले सवाब तो शुरू हो गया, लेकिन इस्लामी नुक्ता निगाह से पहले 3 दिन बहुत अहम है। चुनाचे इंडिया और पाकिस्तान को छोड़कर सारी दुनिया में 3 दिन तक मरने वाले के लिए शोक मनाया जाता है, और बाकायदा प्रॉपर तरीके से एक सफेदा बिछा के उसमें घर के सारे मर्द मसलन आने वालों से पुरसा लेते हैं। 3 दिन यह सिलसिला जारी रहता है जिसमें तलावत कुरान भी चल रही होती है। और फिर इस्लाम में 40 अरबईन इमाम मजलूम अलैहिस्सलाम के अरबईन के लिए तो सारी दुनिया के साहिबान ईमान तैयार हो रहे, लेकिन इसके बाद फिर अरबईन आता है ईसाले सवाब के हवाले से। लेकिन क्या कहना हमारे बुजुर्गों का जिन्होंने बड़ी हिकमत के साथ कुछ ऐसे सिस्टम्स बना के हमको दिए जो अगरचे शरीयत में नहीं है लेकिन शरीयत के खिलाफ भी नहीं बल्कि शरीयत के बाद अहकामात में आसानी पैदा करते हैं। उनमें एक ये सिस्टम कि मरने वाले को आदमी बहुत जल्दी भूल जाता है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आंख ओझल पहाड़ ओझल, तो वो याद रहे हमें। अब ह्यूमन नेचर, सारी जिंदगी तो आप किसी को हर हर मिनट याद नहीं रख सकते, तो एक बाकायदा निजाम बनाया जिसमें हमारे यहां स्वयं के बाद फिर 10वां होता है, 20वां होता है, 30वां होता है, फिर 40वां बड़े पैमाने पर क्योंकि वो जरा सी शरई चीज हो गई, और फिर 3 माही और 6 माही और 9 माही, और उसके बाद फिर बरसी की मजलिस, देसे की मजलिस या बरसी की मजलिस, और फिर हर साल बरसी की मजलिस, और फिर 13 शाबान को अराफा में तमाम मरने वालों को एक साथ मिला लिए। जिंदगी तो आगे बढ़ती रहती, जितना ज्यादा वक्त गुजरता है आदमी मरने वाले को भूलने लगता, तो मुकम्मल तौर पर भूलने भी ना पाए और इतना बोझ भी किसी पे ना डाल दो कि वो उसकी ताकत से बाहर हो कि जी रोजाना याद करो मरने वाले को। तो ये एक सिस्टम एक निजाम बनाया है जिसमें 30वें की अपनी एक अहमियत, लेकिन अहमियत हमारे और आपके यहां इसलिए है कि हमें मरने वाले को सवाब पहुंचाना। मासूम इमाम मजलूम के लिए तो ये ईसाले सवाब का तस्वुर ही नहीं, امام معصوم اور امام مظلوم کے حوالے سے ہمیں ان کا دسواں اور بیسواں اور تیسواں کس طرح گزارنا ہے, کس طرح منانا ہے, جیسے ہم چہلم مناتے ہیں. امام مظلوم کے حوالے سے اربعین کا سسٹم تو اسلام نے بنا کے دیا ہے نا, معصومین نے ہم تک پہنچایا ہے نا. تو امام معصوم کے حوالے سے وہاں عیسیٰ علیہ ثواب نہیں ہوتا ہے, نعوذ باللہ. وہاں پہ جو نظام بنایا اس میں زیارت اربعین بھی شامل ہے, اور امام کا مشن یاد دلا کر پھر یہ ایک جذبہ پیدا کیا جاتا ہے, ایک موٹیویشن کہ ہمیں کس طرح سے آج بھی امام کے مشن کو آگے بڑھانا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک جب اربعین کے مجالس الاسر اسلامک سینٹر میں شروع ہوں گی تو وہاں پہ اس جملے کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ امام کے مشن میں ہمارا کیا حصہ اور کیا رول. یہ ہے ان تاریخوں کے حوالے سے جو ہم اپنے مرنے والوں کے لیے عیسیٰ علیہ ثواب کی وجہ سے یاد رکھتے ہیں, لیکن امام معصوم و مظلوم کے حوالے سے ان کے اس جہاد و مشن میں ہمارا کیا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے, کیا رول ہونا چاہیے, اور پھر مزید باتیں بعد میں ہوں گی. اربعین میں تو پراپر طریقے سے باقاعدہ ایک زیارت اربعین ہم کو دے کر وہ ساری چیزیں یاد دلا دی گئیں, لیکن وہی چیز پھر تیسویں میں, وہی چیز اس سے پہلے بیسویں میں, وہی چیز اس سے پہلے دسویں میں, وہی چیز اس سے پہلے زیارت یا سوئم کی مجلس میں, وہی چیز اس سے پہلے خود عاشورے کے دن یاد کرنا. تو یہ تیسواں ہمیں پھر یہ پیغام دیتا ہے کہ امام مظلوم کی شہادت کو ایک مہینہ گزر گیا, امام مظلوم کے جہاد میں تمہارا حصہ کیا رہا اس ایک مہینے کے درمیان. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ چونکہ یہ والا پیغام بھرپور طریقے سے اربعین کے موقع پہ آتا ہے تو اربعین کی جو مجالس یہاں پہ ہوں گی الاسر اسلامک سینٹر میلبرن میں, اربعین کا عشرہ تو نہیں ہوتا ہے, خمسہ ہوتا ہے, تو وہ خمسے کا یہ تھوڑا سا موضوع بنے گا. لیکن امام معصوم کے تیسرے کے حوالے سے مختصر پیغام دینے کے بعد ذرا اب اسی پیغام کو اپنی عام زندگی میں بھی لے کے آ جائیے کہ امام کے لیے تو ہماری ذمہ داری الگ ہے, لیکن ہمارے اپنے گھر والے, ہمارے اپنے خاندان والے جو دنیا سے گزر چکے ہیں مگر کہیں کھو نہیں گئے ہیں, ختم نہیں ہوئے ہیں. انتم لنا فرتن سابق نحن لکم تبع لاحق. نہج البلاغہ میں مرنے والوں کو ایڈریس کرتے ہوئے مولا نے جو جملہ کہا ہے وہ جتنا ان کے لیے ہے اس سے زیادہ ہمارے لیے, کیا ہے, مرنے والوں ہم اور تم ایک ہی راستے پہ چل رہے ہیں, ہم دونوں کا ڈیسٹینیشن ایک, تم ذرا جلدی پہنچ گئے, ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. جب مثلا فرض کیجئے کہ ایک پورا گروپ کہیں جانے کے لیے نکلے, 15 گاڑیوں میں جا رہے ہیں, اب کسی کی سپیڈ فاسٹ ہوتی ہے, کسی کی سپیڈ سلو ہوتی ہے, کسی کو راستے میں اچانک کوئی کام آ جاتا ہے, جا سب ایک ہی جگہ رہے ہیں, کچھ لوگ جلدی پہنچ جاتے ہیں, بھائی وہ کہاں گئے, باقی لوگ کب آ رہے ہیں, پیچھے آ رہے ہیں, وہ آ رہی ہیں گاڑیاں. انتم لنا فرت سابق و نحن لکم تبع لاحق, تم جلدی پہنچ گئے وہاں پہ, ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے وہیں پہ آ رہے ہیں جہاں پہ تم پہنچے ہو. یہ کہہ کے ہمیں موت کے حوالے سے کئی پیغام یاد دلا دیے گئے, لیکن خیر وہ جہاں پہنچ گئے ہم پیچھے آ رہے ہیں, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. یہ مثلاً بطور مثال شادی کے لیے بارات چلی 20 گاڑیاں, کچھ بہت فاسٹ سے جلدی پہنچ گئے, کچھ ذرا سلو ہیں پیچھے آ رہے ہیں. جو جلدی پہنچ گئے ان کو ایک دم یاد آیا کہ بھائی ہم آ تو گئے ہیں, لیکن مثلاً بطور مثال کہہ رہا ہوں, سہرا بھولا ہے, چھوارے بھولا ہے, پتہ نہیں چھوارے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں, فلاں چیز بھولا ہے, کہا کوئی بات نہیں ہے, جو ابھی وہ آخری گاڑی ہے نا, ابھی وہاں سے نہیں چلی ہوگی نا, ان کو کال کرو, ان سے کہہ دو کہ چیز وہاں رہ گئی, وہ اپنے ساتھ لیتے ہیں, یا اگر ان کو آنے میں کچھ اور دیر ہو رہی تو جو گاڑیاں تیار ہیں آنے کے لیے ان کے ذریعے بھیجوا دیں. یہ ہے سارے ثواب. ہمارا باپ, ہماری ماں, ہمارے بھائی, ہماری بہن, ہمارے چچا, ہمارے ماموں, ہمارا خالہ ہو سکتا ہے, کسی کا شوہر ہو سکتا ہے, کسی کی بیوی ہو سکتا ہے, کسی کی اولاد, جلدی پہنچ گئے. ہم بھی آ رہے ہیں, وہیں آ رہے ہیں, اسی راستے پر ہیں, تھوڑا لیٹ پہنچیں گے. وہاں پہنچ گئے, پتا چلا ان کے پاس وہاں کوئی چیز کم ہے, فوراً کال کیا ہمیں کہ بھائی وہاں وہ چیز لانا بھول گئے, بے خیالی میں رہ گئی, توجہ نہیں تھی ہماری, تمہارے ہو لیتے آنا. اور ہم نے کہا جی ابھی ہمیں آنے میں تو 2 گھنٹے لگیں گے, اچھا تو جو آ رہا ہے اس کے ہاتھ بھیجوا دو. یہ ہے عیسیٰ علیہ ثواب. हमारा मरने वाला वहां पहुंच गया है, पता चला उसके पास नमाजें कुछ रह गई, वो भूल आया कुछ नमाजें, नहीं पढ़ पाया। फौरन उसने कॉल किया कि भाई वो भिजवा दो हमारी नमाजें, भिजवा दो हमारे रोजे, भिजवा दो हमारा हज। अब क्योंकि आज बाकायदा ईसा अलैहि सवाब की मजलिस नहीं है, इसलिए मैं इसमें मजीद तफसील में नहीं जाता, वह नई बात तो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन यहां पे जो मुझे एक बात अर्ज करना है वो जरा सी अजीब बात तो है, लेकिन उसकी आजकल भी जरूरत पड़ रही, और वो ये कि इसमें एक बात का ख्याल रखिए कि मासूमीन को छोड़कर और जो महफूज अनिल खता, वो अजीम शख्सियतें जिनको हम बाज वजूहात की बिना पे मासूम तो नहीं कहते हैं, क्योंकि मासूम सिर्फ 14, लेकिन वो मासूम जैसे ही है महफूज अनिल खता, जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम, तो ये शख्सियतों को छोड़कर बाकी दुनिया में जितने इंसान हैं, चाहे वो एक आम इंसान हो और चाहे कोई बहुत बड़ा मर्जे हो, जब गैर मासूम है तो इम्कान तो हर जगह है ना कि कोई ना कोई हो सकता है, गलती हो गई हो, गुनाह हो गया हो, भूल हो गई हो। मराजे के हवाले से एक बात मुझे अर्ज करना है, बहुत अहम बात है, और वो ये है कि जितने अजीम हमारे सामने शिया तारीख के मर्जे आए उनके हवाले से बात बहुत अहम कि वो पैदा होने के दिन मर्जे नहीं थे या बालिग होने के दिन मर्जे नहीं थे, वो जो अजमत हमारे सामने आती है वो उनकी जिंदगी के आखिरी हिस्से की है। तो अब वो जवानी भी उनकी एक गुजरी है, एक यूथ का जमाने में उन्होंने गुजारा। तो जो अहम बात कहने जा रहा हूं वो ये कि बहुत बड़े बड़े नाम जो तारीख शियात में हैं उन्होंने बहुत किताबें लिखी। एक किताब उन्होंने उस वक्त लिखी है कि जब वो मर्जियत की आला तरीन मंजिल पर थे, मैक्सिमम नॉलेज उनके पास आ चुकी थी। एक किताब उन्होंने उस वक्त लिखी है जब उन्होंने हौज़ा इल्मिया में अभी एजुकेशन शुरू की थी। नाम दोनों पर एक ही होगा, मसलन नाम दोनों पर होगा कि मरहूम इमाम खुमैनी रिजवानुल्लाह अलैह की किताब, चाहे वो किताब हो जो उन्होंने उस वक्त लिखी जब उनकी एज 25 साल हो, चाहे वो किताब हो जो उन्होंने उस वक्त लिखी जब उनकी एज 80 ईयर्स हो। लेकिन अब दोनों किताबों का स्टेटस तो बराबर नहीं हो सकता, तो बाज़ औक़ात ये भी एक गलत फहमी हो जाती है जो हमको समझना कि किसी बड़े से बड़े और अजीम से अजीम आलिम की भी कोई किताब हो तो यह भी देखना पड़ता है कि किताब उन्होंने अपनी जवानी के आगाज में लिखी थी जब ना उनकी नॉलेज इतनी थी ना उनकी रिसर्च इतनी थी, या इन्होंने किताब उस वक्त लिखी है जब इतने बड़े आलिम बन गए थे। खैर, ये बहुत अहम पॉइंट तो है, इसको मजीद वाज़ह करना, लेकिन फिलहाल आज की मजलिस में नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर जिंदगी दी तो अल असर इस्लामिक सेंटर मेलबर्न के इस मेंबर से आपकी खिदमत मुसलसल करता रहूंगा। लेकिन यह बात तो मैंने इसलिए कही थी कि मसलन इमाम खुमैनी की किताब आदाब नमाज उन्होंने उस वक्त लिखी जब वो 40 साल से के भी नहीं थे, या जो करबला के वाकये के हवाले से सबसे अच्छी किताब मानी जाती है इब्ने ताऊस की लहूफ को उस वक्त लिखी जब वो जवान थे, या शेख मोहम्मद हसन साहिब जवाहिरुल कलाम की किताब जवाहिरुल कलाम तकरीबन 45 वॉल्यूम में है, उसकी पहली वॉल्यूम और आखिरी वॉल्यूम के बीच में ही 20 साल मजीद गुजर गए, तो जो इल्म उनका आखिरी वॉल्यूम तक था वो पहली वॉल्यूम में नहीं था। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, इससे ज्यादा कहना मुनासिब नहीं है, ये तो इल्म और किताबों के हवाले से। लेकिन यही आम जिंदगी के हवाले से भी हो सकता है, कोई गलती हो गई हो सकता है कोई गुनाह हो गया हो सकता है जवानी के जमाने में बेतवज्जोही में कोई ऐसा अमल कर लिया हो सकता है। तो अब ये ईसाले सवाब का हमें तस्वुर दिया गया है, याद रखिएगा, वो ये नहीं है कि जो गुनाहगार लोग हैं फकत इनके लिए ईसाले सवाब करो, वो तो इतने बड़े मर्जे उनके लिए हमारी बसात क्या, हम कहा वो कहा, हम उनको क्या ईसाले सवाब करेंगे, ये होता है कि नहीं होता कि भाई उनको क्या जरूरत। अब मैं नाम लेना नहीं चाहता वरना तौहीन हो जाएगी, और नाम नहीं लूंगा तो बात वाजे नहीं होगी, तो तौहीन मत समझिए। भाई हम अल्लामा हिल्ली के लिए क्या दुआ करें, इतना अजीम आलिम हम शहीद सानी के लिए क्या दुआ करें, हम इमाम खुमैनी के लिए क्या दुआ करें, हम आगा खुई के लिए क्या दुआ करें। दुआ नहीं, ईसा अलैहि सवाब, उनको क्या जरूरत। हाँ, हमारे बाप हैं, हमारे चचा हैं, हमारे दादा हैं, हमारे नाना, इनके बारे में हमें मालूम है कि हम जैसे हमसे इंसान थे, उन्होंने कोई नमाज भी कजा की होगी, कभी किसी की खिबत भी की होगी, कभी हो सकता है कभी कोई हराम भी खा लिया हो। अब नतीजा क्या निकलेगा? जो नेक लोग हैं, जो मुत्तकी लोग हैं, जो परहेजगार लोग हैं, जिन्होंने सारी जिंदगी खौफ खुदा में गुजारी, एक आध गलती हो गई, उनको तो कहीं से ईसा अलैहि सवाब नहीं मिला। तो लोग यही सोचते रहे कि वो कहां हम कहां, वो कहां हम, उनके लिए क्या करें। और जो शराबी, कबाबी, जुआरी, पांचों ऐबे शराई, हर गुनाह करने वाला, उसके लिए बोरियां भर भर के ईसा अलैहि सवाब आ रहा, उसके गुनाह सबके सामने, भाई भाई इनके लिए तो जरूर नमाज वहशत पढ़ो, पता नहीं बेचारे पे कब्र में क्या गुजर रही। ये तो घर के बाहर वाले कहेंगे, घर वाले तो जानते हैं ना कि क्या गुजर रही होगी इसके ऊपर। तो क्या ये अजीब साहब को जोक सा नहीं लगेगा? जो बेचारा मुत्तकी और परहेजगार है, एक आध गलती हो गई है, पहले हमें उसका ख्याल करना चाहिए। उसको तो कोई आदमी कोई नेकी भिजवाने को तैयार नहीं, और जिसने दुनिया के भी सारे मजे लूटे, कब्र में भी उसके बोरियां भर भर के सवाब उल्टा जा रहा। ये नहीं कह रहा हूं कि उनको सवाब ना भिजवाइए, भिजवाइए, और ये ज्यादा हकदार भी हैं, लेकिन इस्लाम ने कहा किसी को भी ये समझ करके वो इतना नेक और इतना बड़ा और इतना अजीम आदमी है, ईसा अलैहि सवाब से महरूम ना करो। हो सकता है जिसे तुम समझ रहे हो कोई जरूरत नहीं, उसे इतने से नेक काम की जरूरत पड़ जाए। ये इतने से पर तवज्जो दीजिएगा, कभी इतना सा नेक काम किसी को जन्नत से जहन्नम में पहुंचा देता, इतना सा नेक काम न होना। मेरे साथ तो कई दफा ये यहां आम जो सुपरमार्केट है, इसके अंदर ये मसला हुआ, किसी चीज की प्राइस थी 95 सेंट, मेरे पास 90 थे, सिर्फ 5 सेंट, 5 सेंट मना कर दिया उसने कि चीज नहीं मिल सकती, क्योंकि भाई जब कैश काउंटर पे खड़ा, उसकी अपनी दुकान को थोड़ी। हाँ, जिनकी छोटे बिजनेस है, अपनी दुकान है, काचा एक आठ डॉलर भी कम है तो कहते हैं ले जाओ। लेकिन बड़ी बड़ी जो सुपरमार्केट है, गया मैं कैश काउंटर पर, मैंने काउंट किया, कहा 90 सेंट है, 95 नहीं है, सॉरी नहीं मिलेगी चीज आपको। तो कभी किसी को जन्नत इतनी सी नेकी न होने की बिना पे रोक दी जाती है। तो वो बेचारा जो हमसे कुछ नहीं मांग रहा, इतनी सी नेकी मांग रहा, मगर इसलिए हम उसको नहीं दे रहे कि हम डर रहे हैं, हम घबरा रहे हैं। इतना अजीम आदमी, इतना बड़ा आदमी, इतना नेक आदमी, इतना मुकद्दस आदमी, खुद नाइब इमाम, हम क्या कर सकते हैं उसकी मदद। नतीजे में वो लोग महरूम रहते हैं, ये लोग सब लूट के ले जाते हैं, जिन्होंने दुनिया में भी गुनाह किया और कब्र में भी मजे लूटे। मेरे जुमलों से ये मतलब मत निकालिए कि इनकी मदद नहीं करना, करना है और ज्यादा करना है, मगर उनको भी याद रखना। अब इसकी एक छोटी सी मिसाल सुनी, एक छोटा सा वाकया सुनी, और फिर हम अपनी तकरीर के दूसरे हिस्से पर दाखिल हो। मिसाल क्या है? कुरान करीम की एक आयत मैं अक्सर पढ़ता रहता हूं, वफी अमवालिहिम हक्कुल लिस्साइल वल महरूम। कुरान कह रहा है तुम्हारे माल में हक है जो तुमसे मांग रहा है, सवाल कर रहा है, आस्किंग यू, वल महरूम, और जो महरूम है। रावी ने कहा मौला इन दोनों में फर्क क्या है? कहा कि दोनों के घर में मसलन गुर्बत है, दोनों को पैसे चाहिए, एक है जो मांग लेता है, एक है जो गैरतमंद है, एक है कि जो एम्बेरसमेंट फील कर रहा, एक है जिसके पास सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो फाके कर लेगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। इमाम ने कहा दोनों का हक, मांगने वाले को मिल जाता है क्योंकि वो मांग रहा, और जो नहीं मांग रहा है, हो सकता है उसकी हालत पहले आदमी से भी ज्यादा बुरी और वर्स हो, लेकिन उसे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग, हमारा नेचर ये बन गया, जो हाथ फैलाएगा और मांगेगा हम उसी को देंगे, जो नहीं मांगेगा, अल्लाह ने हमें कॉमन सेंस दी, अल्लाह ने हमें अकल दी, हम देख भी सकते हैं कि आखिर ये किस तरह इन हालात में गुजारा कर रहा होगा, लेकिन मांग नहीं रहा तो कैसे दे। इमाम ने कहा कतन नहीं, दोनों का हक। और यहां पर एक मुख्तसर सा मसला बता दूं कि इस्लाम में इसीलिए पेट भरे मालदार साहिब हैसियत आदमी की भी मदद का बहुत ज्यादा हुक्म आया। मुख्तसर एक मसला सुन लीजिए, वाजिब सदका सिर्फ गरीब को देना है जो आपकी पूरी तहकीक हो। सुन्नत सदका आप अमीर को, गरीब को, शिया को, सुन्नी को, मुसलमान को, काफिर को, सबको दे सकते हैं, अमीर को, गरीब को, सिवाय इसके जो खुल्लम खुल्ला दुश्मन है इस्लाम उसको छोड़ दो। अब मैंने कहा कि इसके एक मिसाल मैं दे दूं, मसलन आजकल और इससे पहले भी अजाखाने हैं, इमामबाड़े हैं, मस्जिदें हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एक वो होते हैं जो मांगते हैं, वो अपने लिए थोड़ी मांग रहे हैं, इमाम के कॉज के लिए मांग रहे हैं, कोई बुरा काम नहीं कर रहे, फकीर बन के मांगते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है, चादरें घुमा के मांगते हैं, उनको मिल जाता। एक है जो मांगना नहीं चाहते, लेकिन हम इस दुनिया में रहते हैं, हमें पता है कि कोई प्रोजेक्ट भी बगैर माली मदद के आगे नहीं बढ़ता, बढ़ सकता है, कैसे चल रहा होगा। जी वो शायद उनके पास बहुत पैसा, या उनके पास बहुत पैसा, अपनी तरफ से खुद ही एज्यूम कर लिया। अब मसलन ये अलासर इस्लामिक सेंटर, एक मर्द मोमिन ने, मोहतरम जकी पंजू साहब ने अपने वालिद की ख्वाहिश पर अमल करते हुए इसको बनाया पूरा तन तना। अब ये चल भी रहा, बहुत सारी इसकी एक्टिविटीज ऐसी जो कहीं और भी शायद ना हो या इस स्टैंडर्ड की ना हो, क्योंकि बाज जगह पे क्वांटिटी देखी जाती है, बाज जगह पे क्वालिटी देखी जाती है, यहां पे इनका जोर क्वालिटी पर है। लेकिन अब ये समझ कर कि चूंकि ये लोग मांगते नहीं है तो इसका मतलब इनको जरूरत नहीं, ये भाई साले सवाब वाली बात थी। दरमियान में एक बात निकल आई तो मैंने कहा कि जरा सा एक प्रैक्टिकल मिसाल भी दे दू, आज दुनिया में और भी ऐसे इमाम बाड़े होंगे। तो इसीलिए बहुत सी जगहों पे इस्लाम ने कहा कि इस बहस में ही ना पढ़ो कि मांगा है कि नहीं मांगा, इस तरह मदद करो कि अगर किसी पेट भरे या पैसे वाले को भी वो मदद मिल जाए तब भी तुम्हें सवाब मिलेगा, तब भी सवाब मिलेगा। अब आइए एक छोटा सा वाकया सुन लीजिए। दुरूद भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। और वाकया क्या है? साबित इब्ने दीनार इस वाकये के रावी, साबित इब्ने दीनार चौथे इमाम के इतने करीबी सहाबी कि मासूम की हदीस यह है कि जो सलमान फारसी का स्टेटस रसूल खुदा के पास था, वो साबित इब्ने दीनार का स्टेटस हमारे बाबा चौथे इमाम के पास। हमारे यहां एक लफ्ज इस्तेमाल होता है मासूमीन के सहाबी, लेकिन अब क्योंकि हमारे पास तो खुद मासूमीन के हालात सुनने का वक्त भी नहीं होता, तो असहाबे इमाम के हालात कौन सुनेगा। लेकिन असहाबे इमाम एक ऐसा लफ्ज है जिसके बाद फिर इसमें कैटेगरीज हैं। ये असहाबे इमाम, अब इनमें कुछ हवारी, इनमें कुछ औलिया, इनमें कुछ बाब हैं, इमाम तक पहुंचने का दरवाजा, इनमें कुछ शुरतुल खमीस हैं, और एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। ये तो एक बिल्कुल एक अलग मौजू होगा, क्या करें कि लोगों को मेरी मजालिस पसंद नहीं आती, वरना बहुत सी बातें बयान करने को दिल चाहता। तो साबित इब्ने दीनार चौथे इमाम के हवारियों में शामिल है और क्लोजेस्ट कंपेनियन ऑफ फोर्थ इमाम, क्लोजेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। ये हमारे यहां अपने नाम से इतना मशहूर नहीं है, अपनी कुन्नियत से मशहूर है, तो चले मैं कुन्नियत ही इस्तेमाल कर दूं। अबू हमजाए सोमाली, इनकी कुन्नियत है अबू हमजाए सोमाली। इनकी एक दुआ है जो रमजान में बहुत से लोग पूरे रमजान हर रात को पढ़ते हैं, दुआ है अबू हमजाए सोमाली। ये अबू हमजाए सोमाली, انہی کا واقعہ ہے کہ جب پہلی بار ان کی ملاقات چوتھے امام سے ہوئی تھی کوفے میں، تو یہ امام کے قدموں پہ گرے، پھر امام کو سجدہ کیا اور امام نے فوراً ڈانٹ دیا اور کہا کہ سوائے اللہ کے سجدہ کسی کو جائز نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ بھی ایک ایشو ہے، جو ہمارے ہاں لوگ علم کو، زری کو، کربلا جا کے روزے کو سجدہ کرتے ہیں، اس پہ اعتراض نہیں اگر وہ سجدہ اللہ کے لیے ہو. اور یہ تو خود سجدہ کرنے والا جانے گا کہ اس کے دل میں کیا، ہم کون ہیں اس کے بارے میں فتویٰ لگانے والے. لیکن جو کھلم کھلا کہتے ہیں کہ ہم ان کو سجدہ کر رہے ہیں، ان کی بات امام نے ڈانٹ دیا کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے، ہمیں بھی سجدہ نہیں کیا جا سکتا. خیر، یہ ثابت ابن دینار ابو حمزہ صومالی مولا کے بہت ہی قریبی صحابی، جس طرح مولا میثم تمار کو لے کر کوفے کے باہر ویرانے میں جاتے تھے اور کنویں میں منہ ڈال کے راز کی باتیں کرتے تھے، چوتھے امام ثابت ابو حمزہ صومالی کو لے کر نجف میں اپنے دادا مولا علی کے روزے پہ جاتے ہیں. اس وقت تک مولا علی کا روزہ چھپایا، قبر چھپائی ہوئی تھی، پبلک کے سامنے نہیں تھی قبر، صرف ان کو لے کے جاتے تھے بہت ہی سیکرٹ طریقے سے، کیونکہ پچھلے چند سالوں میں آپ نے بہت زیادہ زیارتیں کی ہیں، تو یہ ساری روایتیں وہیں پہ پڑھی جاتی ہیں اور وہیں پہ سننے میں مزہ بھی آتا. جب بتایا جاتا ہے کہ دیکھیے ابو حمزہ صومالی سے چوتھے امام کی پہلی ملاقات کہاں ہوئی، اور چوتھے امام ان کو لے کے جب نجف گئے تو امام کی پارکنگ اپنا اونٹ کہاں باندھا، اور پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ پھر جب چھٹے امام آتے تھے وہ اپنا اونٹ کہاں باندھتے تھے، وہ پارکنگ کہاں. یہ ساری زیارتیں وہیں پہ ٹھیک لگتی ہیں، یا تو وقت بھی نہیں. ابو حمزہ صومالی ایک بار سوال کر لیا کہ فرزند رسول، یہ جو آپ کا طریقہ کار ہے اس کی کوئی خاص وجہ بھی ہے، یا چونکہ اہل بیت کریم ابن کریم ابن کریم ہے؟ کیا طریقہ کار مولا کا طریقہ کار؟ کون مولا؟ چوتھے امام. وہ یہ تھا کہ مدینے کے اندر روز آنا صبح و شام کو امام کا دسترخوان بچھتا تھا اور پورے مدینے میں یہ اناؤنسمنٹ ہوتا تھا روز آنا صبح روز آنا شام، کیا ہے مدینے والوں، مدینے میں باہر سے آنے والوں سب کو امام کی طرف سے دعوت عام ہے، یہ دسترخوان بچھا ہوا ہے، آؤ اور آ کر امام کے دسترخوان پر امام کے مہمان بنو. پر آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں مدینہ کتنا بڑا تھا، جتنی آج مدینے میں مسجد رسول ہے وہ تھوڑا سا اس سے زیادہ، جنت البقیع مدینے سے باہر. تو یہ مت سمجھیے کہ وہ پورا شہر آپ کے ذہن میں میلبرن آ جائے، آپ کے ذہن میں کراچی آ جائے، مدینہ بہت بڑا شہر، روز آنا اعلان، سال میں ایک دفعہ، مہینے میں ایک دفعہ، کوئی خوشی کے موقع پر، کوئی غمی کے موقع پر، کوئی مخصوصی کے موقع پر. سعودی عرب کے اندر مثلا رمضان میں روز آنا، افطار کا جو دسترخوان بچھتا ہے، مشہد مقدس کا افطار تو دیکھنے کے قابل ہوتا، اربعین کی واک کے درمیان جو لوگوں کو مہمان بنایا جاتا، لیکن سارا سال روز آنا صبح شام. حتیٰ اگر امام اس وقت مدینے سے باہر بھی گئے ہوں تو انتظام چل رہا. تو ابو حمزہ صومالی نے پوچھ لیا کہ مولا یہ کوئی خاص اس کی وجہ ہے یا ویسے ہی کریم ابن کریم ہے، اپنے دسترخوان پہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں؟ چوتھے امام نے کہا کہ نہیں، اس کی ایک وجہ. اب وجہ کیا بتائی؟ کہا تمہیں پتا ہے نا کہ انبیاء کا اللہ نے جو امتحان لیا تو قرآن میں سب سے تفصیلی کس کا امتحان آیا؟ یعقوب نبی کا، پورا ایک سورہ آ گیا. خالی نام نہیں، سورہ یوسف پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ. انبیاء کے نام پہ تو اور بھی سورے ہیں، لیکن یہ بہت مختصر ہے، یا یہ کہ چند آیتوں میں اس نبی کا ذکر ہے، باقی دوسرے پیغامات. سورہ قصص آلموسٹ سورہ یوسف تو آلموسٹ احسن القصص کہیں گے، برا واقعہ یعقوب کا اتنا بڑا امتحان. اور یاد ہے آپ کو نا کہ یعقوب کے رونے سے امام کربلا کے ماتم کو ایک دلیل عطا کر رہے ہیں، کہا یعقوب کا اللہ نے اتنا بڑا امتحان لیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ ابو حمزہ صومالی نے کہا مولا آپ بتائیے. کہ وجہ یہ تھی کہ ایک دن یعقوب کا سارا خاندان ان کے گھر میں مہمان بنا، شب جمعہ تھی، اب 12 بیٹے ہیں، ان کی بیویاں ہیں، خود یعقوب کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، بہت بڑا خاندان، سارا ان کے گھر مہمان بنا. اور اس وجہ سے بہت سارے بکرے وکرے ذبح ہوئے، پوری دعوت تھی فل فلیج، سب نے اور دسترخوان، پورے خاندان والے بیٹھے، خوب پیٹ بھر کے کھانا کھایا. اور اسی رات کے اختتام پر حضرت یوسف نے وہ خواب دیکھا، یا بت انی رائے تو احد عشر کوکبا والشمس والقمر لی ساجدین، بابا میں نے خواب میں دیکھا 11 ستارے چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے، اور یہاں سے وہ امتحان شروع ہوا. یہ یوسف کو پھر قید کیا اور گوہ میں پھینکا، اور باپ سے بیٹا جدا ہوا، اور باپ اتنا رویا کہ وہ عزت عینا ہوا قصیم آنکھیں سب. اسی رات کو ایک خواب دیکھا حضرت یوسف نے، کیوں کیوں امام پوچھ رہے ہیں ابو حمزہ صومالی سے، کیوں بتا رہے ہیں؟ وجہ یہ کہ اسی رات کو اسی محلے میں ایک ایسا آدمی بھی تھا جس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، لیکن وہ مانگنے کا عادی نہیں تھا، وہ اسی فاقے کے عالم میں ساری رات گزار رہا، گزار لیتا ہے. لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ پورے محلے میں شور شرابہ، دیگیں چڑھی ہوئی ہیں، اور پتہ نہیں کتنے بکرے ذبح ہو رہے ہیں، اور کیسے کھانے پک رہے ہیں، اور دسترخوان بچھا ہے، بہت بڑا خاندان تھا حضرت یعقوب کا، بنی اسرائیل پوری اولاد انہیں کی سمجھیے. خدا بند، جہاں جو درجنوں آدمیوں کو کھانا دیا جا رہا، اور میں فاقے کے عالم میں اسی محلے میں ہوں، ایک آدمی کا کھانا یہاں نہیں پہنچایا جا سکتا تھا، بس اللہ سے فریاد کر کے رہ گئے. اور اللہ نے یعقوب پہ وہی نازل کی کہ اے یعقوب، تمہارے محلے میں ایک آدمی بھوکا سویا، اتنا کو کھانا کھلایا اور اس کو کھانا نہیں بھجوایا. کہا خدا بندہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ بھوکا. کہا اگر معلوم ہوتا اور اسے نہ دیتے کھانا تو عہدہ نبوت سے معزول کر دیے جاتے، اگر معلوم ہوتا اور پھر بھی نہ دیتے. اچھا اب ایک محاورہ ہے، نبی نہ تو ایسا ہوتا ہے کہ نبی نہ ہو اور اس کو نبوت دی جائے پھر نبوت چھین لی جائے، ایک محاورہ، عہدہ نبوت سے ہٹ جاتے. تمہیں ڈانٹ اسی لیے پڑ رہی ہے کہ تم نے معلوم کیوں نہ کیا، اور معلوم نہ بھی ہوتا تو اتنے لوگوں کو کھانا دیا، محلے والے کو اس کو بھی دے دیتے. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ فاقے میں، آپ کو نہیں بتائیں گے ہم فاقے سے. اب واجبات نہیں دے سکتے، مستحبات تو دے سکتے ہیں، جو مسئلہ شرعی میں نے شروع میں بتایا، یہ ایصال ثواب کا بھی اصول ہے کہ ہر ایک کو ثواب پہنچاؤ، چاہے کوئی مرجع عالی قدر اور نائب امام ہی کیوں نہ ہو. اور یہی دنیاوی مدد کا بھی اصول، ایصال ثواب آخرت سے تعلق ہے، دنیاوی مدد یہاں سے. چنانچہ یہ جو ایک طریقہ کار ہے نا کہ مومنین کو کھانا کھلاؤ، لوگ کہتے ہیں وہ جو پیٹ بھرے ہو، پیٹ بھرے ہو سکتا ہے کہ اتنا 50 پیٹ بھروں میں کوئی ایک ایسا ہو جو فاقے کے عالم میں ہو. 50 بھکاری تم سے مانگ کے جائیں گے، شاید اس کا اتنا ثواب نہ ہو جتنا اس ایک آدمی کو کھلانے کا ثواب ہے جس نے تم سے کچھ نہیں مانگا. کیوں؟ غیرت مند ہے، عزت نفس ہے، سیلف ریسپیکٹ ہے، وہ فاقے کرنا برداشت کرے گا، لوگوں کے آگے اب ہاتھ پھیلانا برداشت نہیں کرے گا، تو اسے بھی دینا. اور یہی وجہ کہ کسی عالم کا انتقال ہو تو ہم اس کے لیے بھی ایصال ثواب کرتے ہیں، ذاکر و خطیب کا انتقال ہو ہم اس کے لیے بھی ایصال ثواب کرتے ہیں، جیسے علامہ جاوید جعفری صاحب، ذاکر اہل بیت، لاسٹ ایئر پنجتن سینٹر اور وکٹوریا کے اندر پہلا اچھا پڑھ کے گئے تھے، اس سے پہلے بھی تشریف لا چکے تھے پی ایس بی میں، گرچہ शहजादी कौनैन की, बेटे की खिदमत सारी जिंदगी की, शायद जरूरत भी ना हो हमारी और आपकी, लेकिन जो उसूल इस्लाम ने बताया, आलिम हो, जाकिर हो, खतीब हो, मुश्तहिद हो, मर्जी हो। और यही वजह है कि दो जुमलों में मैं मरूं, आयतुल्लाह अल-उज़्मा आगा अबुल कासिम खुई को भी याद कर रहा हूं, सिर्फ दो जुमले, ज्यादा वक्त नहीं। इतना अजीम मर्जी, 8 सफर 1412 हिजरी को इस दुनिया से रुखसत हुए। 8 अगस्त 1992 हालात उनके ऐसे हैं और इतने हैं, और जो कि मेरी पहली प्रॉपर तकलीद ही उनकी थी, इस एतबार से मेरे पास उनके हवाले से मालूमात भी इतनी। याद रखिए कि आज 30 साल हो रहे हैं उनके इंतकाल को, लेकिन ऐसा अजीम उनका नाम है कि इराक के हौज़ा इल्मिया में, हत्ता ईरान के हौज़ा इल्मिया में, हत्ता सारी दुनिया की इल्मी दुनिया में कोई आलिम भी हो बड़े फख्र के साथ कहता है कि मैं मरहूम आगा खुई का शागिर्द हूं या उनके शागिर्द का शागिर्द हूं। उनका शागिर्द होना, जैसा दुनिया में सैकड़ों यूनिवर्सिटियां, लेकिन ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ, कैम्ब्रिज का पढ़ा हुआ, बर्कले यूनिवर्सिटी, याल यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एक नाम है। जो लोग कुछ ज्यादा मुहिम में बता रहे ना, उनसे माजरत, मुझे ऑस्ट्रेलिया की किसी ऐसी यूनिवर्सिटी का नाम याद नहीं आ रहा। तौहीन तो नहीं कर दी मैंने आपके या ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन एक नाम है ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, बर्कले, हार्वर्ड, वहां से पढ़ने वाला फखर के साथ कहता आगा खुई का नाम इल्मी दुनिया में इस वक्त ऐसा कि अगर किसी को कभी यह साबित करना हो कि मैंने कुछ पढ़ा है तो कहता मालूम है मैं आगा खुई का शागिर्द रह चुका हूं। और इतना अजीम मर्जे, हमारे बाद मुश्तहिदीन का फतवा है कि अगर मरने वाले मुश्तहिद की नॉलेज जिंदा मुश्तहिद से ज्यादा तो तुम्हें वाजिब है मरने वाले पर बाकी रहना। तो फिर ये मालूमात होती रहती है कि मरने वाले का इल्म अभी तक ज्यादा है कि जिंदा का ज्यादा हो गए। उमूमन इसके लिए उलमा से पूछा जाता आगा खुई वो अजीम मर्जी है कि अभी तक उनके इल्म की गवाही आम उलमा नहीं देते हैं, मुश्तहिदीन नहीं देते, बड़े बड़े मराजे कहते हैं। आयतुल्लाह अल-उज़्मा शेख इसहाक़ फ़याज़ एक मर्जी, आयतुल्लाह अल-उज़्मा हाफिज शेख बशीर नजफी एक मर्जी, ये मराजे गवाही देते हैं कि हम गवाही दे रहे हैं कि आगा खुई का इल्म अभी भी आज के तमाम मराजे से ज्यादा है। मसलन बहुत बड़ी बात है, ये इल्मी चीजें हैं जिसको बयान करने का वक्त नहीं। आगा खुई का पहला इंटरेस्टिंग फतवा जो मेरे पास आया था, मैं बहुत उस वक्त छोटा था, 70 से उनकी तकलीद बड़े पैमाने पे शुरू हुई जब आयतुल्लाह मोहसिन हकीम का इंतकाल हुआ, लेकिन उस वक्त बहुत कम उनके फतवे मेरे इल्म में थे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग, अब वो आज पढ़ने का मौका नहीं है, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक में अरबईन की जो मजालिस होंगी तो पहली मजलिस में पढ़ूंगा, क्योंकि वो उसका आगा खुई से के हालात से इतना ताल्लुक नहीं, उसका हमारी कौम से ताल्लुक है। तो खैर, आगा खुई के हवाले से आजकल एक वाकया और कुछ अरसे पहले भी पढ़ा गया था, वो आधा तो सही है, बाकी आधा कंफर्म नहीं है, बल्कि मेरे ख्याल में शायद गलतफहमी है। आगा खुई इतने मुहिब अहले बैत थे कि अय्याम अज़ा के 2 महीने काला लिबास पहना करते थे, वो भी और उनके घर वाले भी। अलबत्ता ये कहा जाता है कि उनके बाप के यहां औलाद नहीं थी तो उन्होंने मन्नत मानी या नजर की, ये वाकया मेरे हिसाब से सही नहीं है ये हिस्सा। और ये भी मैं बता दूं कि बाद महाराजे का फतवा कि काला कपड़ा नमाज में मकरूह है तो अय्याम अज़ा में भी नमाजों में ना पहने, बाकी पहने हर वक्त। लेकिन आगा खुई 2 महीने अपने और अपने घर वालों पर यह लाजिम करार देते थे, वो नजर वाले वाकई की वजह से नहीं, क्योंकि आगा खुई के वालिद के पास पहले से औलाद थी। आगा खोई के बड़े भाई का नाम है अब्दुल्ला अल मुसवी अल खोई, तो पहले से साहिब औलाद थे। आगे ये भी मुझे पता है कि आगा खोई के वालिद ने पहली शादी की उससे वो बेटा था, फिर शायद उन बीवी का इंतकाल हो गया तो दूसरी शादी की उनसे आगा खोई थे, तो कम अज कम उनके बाप के पास औलाद कोई मसला नहीं था। तो काले कपड़े पहनना ये उनके इश्क अहले बैत और इश्क हुसैन की दलील थी, पहनते थे। लेकिन वो नजर की वजह से, इसलिए मैं उसको नहीं मानता हूं कि उस नजर का कोई मौका महल ही नहीं था। लेकिन हां, मोहिब अहले बैत कितने थे, अजमत आका हुसैन मानने वाले। आगा खोई के बड़े दामाद हैं सैयद नसरुल्लाह अल मुस्तंबित। आगा खोई की कई बेटियां हैं, तो सबसे बड़े दामाद थे सैयद नसरुल्लाह अल मुस्तंबित, बहुत बड़े आलिम थे ये भी। आगा खोई के इंतकाल से 6 साल पहले इनका इंतकाल हो गया, वरना तो काफी इम्कान था कि आगा खोई के बाद ये मर्जे बनेंगे। और बहरहाल इनके बारे में भी वही है जो सद्दाम का एक तरीकाकार था, ऐसे बड़े बड़े उलमा और मुज्तहिदीन को या रोड एक्सीडेंट में शहीद करवा दिया जाता था और या फिर हॉस्पिटल के इलाज में जहरीली सुई के जरिए इनको शहीद किया, वो एक अलग चीज है। सैयद नसरुल्लाह अल मुस्तंबित एक वाकया सुनाते हैं, ये कंफर्म है, डॉक्यूमेंटेड है। और वो ये है कि आगा खोई के यहां का एक तरीकाकार यह था कि अय्याम अज़ा में रोजाना उनके घर में लेडीज की मजलिस होती थी, और हमारे मुज्तहिदीन और मराजे कौन से, उनके आलिशान महल या बड़े बड़े मकानात होते हैं, छोटा सा घर था। तो आगा खोई रोजाना जो मजलिस का वक्त है मसलन 9 बजे, उससे पहले अपने घर से निकल जाते थे, और जब औरतें आती थी पूरा घर औरतों से भर जाता था, और जब मजलिस खत्म होती थी उसके बाद वापिस तशरीफ लाते थे। एक दिन पता नहीं क्या बात हो गई कि वो घर से नहीं निकल सके, घर में ही रहे। अब औरतें आईं, पता चला कि आगा खोई घर में, घर छोटा सा, बतौर मिसाल मैं कह रहा हूं, 2 कमरे थे, कमरे में तो खुद आगा है, तो बाकी सारी औरतें बड़ी मुश्किल से एक दूसरे कमरे में कुछ समाई कुछ नहीं समाई, आधी रही आधी चली गई, जगह ही नहीं। यह है हमारे महाराज जिन पे इतराज होता है कि वो खुम्स खाने वाले हैं और हमारे पैसे से ऐशो आराम करने वाले हैं, और पता नहीं कितनी उनकी कोठियां हैं और कितने बंगले हैं और कितनी गाड़ियां हैं। देखिए बात बहुत अहम है, लेकिन वक्त मेरे हाथ से फिसल फिसल के निकल रहा। तो आगे कुछ दिन घर में ही रहे, तो जिसकी वजह से मजलिस समझिए आधी खवातीन तो आ ही नहीं रही नहीं सकी, वो दरवाजे से ही चली गई, और जो थी वो भी जल्दी जल्दी मजलिस पढ़ के निकल गई। यानी जो औरत में एक शर्म हया होती है ना, छोटा सा घर है बराबर में इतना बड़ा मुज्तहिद, मर्जे तो शायद उस वक्त तक नहीं हुए थे, इतना बड़ा मुज्तहिद मजलिस ना पड़ी जाए। तो आजकल की हमारी बात खवातीन में इतनी हिम्मत आ गई, या भी समझिए सही मानों में पैदा भी नहीं हुई और सीना तान के बड़े बड़े उलमा और मराजे को चैलेंज कर दी। पहले कुछ उसूल होते थे, कुछ उसूल कुछ एटिकेट्स कुछ प्रोटोकॉल कुछ साहिब इल्म की शान, तो जल्दी मजलिस पढ़ के चली गई, खत्म बात। अगली सुबह को आगा खोई की निगाह पड़ी अपनी बीवी पर, देखा बहुत परेशान है, पूछा क्या बात है, कहा मैं रात को अभी अभी एक ख्वाब देखा है, नजफ अशरफ मौला के रोजे के बिल्कुल करीब घर महिला हमारा में, जिसे सद्दाम ने तोड़ दिया और आजकल वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा, मैंने ख्वाब में देखा कि आपकी मौत हो गई। बीवी का दिल वैसे ही ज्यादा परेशान हो, नींद हो गई है मेरी। और वाकई उस दिन आगा खोई बीमार पड़े, और इतने बीमार कि आंखों की बिनाई ऑलमोस्ट आधी रह गई चंद घंटों में, बिस्तर से उठने की ताकत ना रही। अब इनके दामाद कहते हैं कि नसरुल्लाह मुस्तंबित जब वो आगा खोई उस दिन इश्तिहाद का दर्स देने नहीं आए, तो मैं घर गया मालूम करने क्या बात। आगा के कमरे में दाखिल हुआ, छोटा सा कमरा था, देखा बिस्तर पे पड़े हुए, बीनाई भी आधी रह गई है, पूरा काम नहीं कर पा रही है बीनाई, और हालत यह कि चेहरे पे इतनी स्वेलिंग है और इतना वर्म है कि नाक और चेहरे में फर्क नहीं लग रहा है, इतना वो चेहरा सूजा हुआ है, और इस स्वेलिंग की वजह से इतना सुर्ख। घबरा गया मैं, یہ آپ کی حالت ہوئی ہے، کوئی علاج، کوئی ڈاکٹر، کوئی طبیب کا یہ الماری کھولو۔ میں نے الماری کھولی، کہا اس میں مٹی نظر آ رہی ہوگی۔ میں نے کہا ہاں، کہا وہ اٹھا کے میرے چہرے پہ لگاؤ۔ میں نے اپنے اندازے سے پہچان لیا کہ یہ خاک شفا لگ رہی۔ وہ مٹی اٹھا کے آغا کے پورے چہرے پہ لگائی اور گھر آ گئی۔ اگلی صبح کو دیکھا کہ آغا خوئی اسی پرانے انداز کے ساتھ ممبر پہ بیٹھے ہوئے اجتہاد کا درس دے رہے ہیں۔ میں نے جا کے قریب جا کے مزاج پرسی کی، پتا چلا وہ سارا ورم چلا گیا، وہ ساری سرخی چلی گئی، آنکھوں کی بینائی اتنی ہی پرفیکٹ ہو گئی جتنا پہلے ہوئی تھی۔ میں نے ری کنفرم کیا کہ وہ مٹی کا وہ خاک شفا تھی۔ اور مجھے پتا ہے کہ جس چیز کا کوئی علاج نہ ہو، میرے مظلوم جد سید ہے نا، خاک شفا۔ دیکھیں، یہ ہمارے وہ مراجع ہیں جن کو آج کل بہت سے لوگ اس لیے مقصر کہتے ہیں کہ وہ صرف نماز اور روزہ بھی کہتے ہیں کہ واجب ہے کرنا۔ یہ عظیم مرجع، ان کے دو تین اور واقعات ہیں لیکن آج چھوڑ رہا ہوں، شاید اربعین کے خمسے میں ایک آدھ واقعہ اور پڑھ دوں گا۔ بیوی نے خواب دیکھا اور شوہر پریشان ہوا، نہیں پریشان نہیں، وہ شوہر بیمار ہوا۔ کون بیوی؟ اس اب جو واقعہ پڑھنے جا رہا ہوں، اس کی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ آج کی مجلس میں مجھے ویسے ہی آغا خوئی کا ذکر کرنا تھا، ایصال ثواب کے پہلو سے نہیں۔ یہ واقعہ جب صدام نے ایران پہ حملہ کیا، شروع میں ایسا لگا کہ وہ کامیاب ہوتا جا رہا، ایران اس کے قبضے میں آ رہا ہے، بعد میں الٹی آتے گلے پڑ گئی۔ ملت ایران نے امام خمینی کی قیادت میں ایسا جہاد کیا اور ایسی قربانی دی، اب وہ گھبرا گیا، کہا کسی طریقے سے جنگ ختم کرنا۔ تو اپنے چند خاص نائبین کو اور نجف و کربلا کے گورنر کے ساتھ آغا خوئی کے پاس بھیجوایا، کہا کہ اس وقت یہ سینئر موسٹ مرجع ہیں شیعہ دنیا کے، چنانچہ ان سے جا کے کوئی ایسی تحریر لے کے آ جاؤ جو اس جنگ کے خلاف ہو یا ایران کے خلاف ہو، میں تفصیلات میں نہیں جاتا ہوں۔ اب پہنچا یہ ڈیلیگیشن، اس عراقی صدام والے اتنے ظالم، شہید باقر صدر کا واقعہ بھی لوگوں کو پتا ہے، ان کی مظلومہ بہن آمینہ بنت الہدا کا واقعہ بھی لوگوں کو معلوم۔ اب یہ لوگ پہنچے اور اس کے بعد پہلے تو نرمی سے، اس کے بعد تھریٹ کے انداز میں، کیا کوئی تحریر دینا پڑے گی؟ انہوں نے کہا نہیں، جنگ شروع ہوئی تو مجھ سے پوچھا تھا جب جنگ بند کرنے کے لیے میرے پاس آ رہے، میں اس قسم کا کوئی جملہ اپنی زبان سے نہیں کہوں گا نہ لکھوں گا۔ تو کہا آپ کو پتا ہے کہ وہ ہماری حکومت، اور ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ جو لوگ آغا کے اس کمرے میں بیٹھے تھے، ان میں سے ایک نے مجھے خود لندن میں یہ براہ راست واقعہ بتایا، کہ آغا کے چہرے کا رنگ اتنا سرخ ہو گیا کہ ہمیں لگا جیسے کھال سے خون گرنے والا، خون ٹپک کے نکلے گا، اور کہا تم مجھے موت کی دھمکی دے رہے ہو؟ آج میری عمر 92 ہے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا اس وقت سے اللہ سے میں تین دعائیں مانگ رہا ہوں، یعنی سمجھیے 80 سال کی دعائیں ہیں، 85 سال کی دعائیں۔ پہلی دعا یہ تھی کہ اے اللہ مجھے اجتہاد کا نور عطا کر دے۔ اجتہاد دنیا کی واحد تعلیم ہے جو خالی پڑھنے سے حاصل نہیں ہے، پڑھنا ضروری ہے، بغیر پڑھے بھی نہیں ملتی، لیکن خالی پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتی، نائب امام بننا ہے۔ الحمدللہ یہ دعا اللہ نے میری پوری کی، اور کیسے پوری کی؟ جیسا میں نے تقریر کے بیچ میں کہا، یہ آغا خوئی سے پڑھنے والا مجتہد فخر سے کہتا ہے کہ میرے اجتہاد کو مانو، میں نے آغا سے پڑھا ہے، آغا سے، تو اللہ نے دعا پوری کی۔ دوسری میری دعا یہ تھی کہ اللہ مجھے ایک ایسی بیوی عطا کرے جو میرے ان کاموں میں میری مددگار بنے۔ میں نے دنیاوی زندگی میں بھی دیکھا ہے اور دینی زندگی میں بھی، اتنے بریلینٹ اسٹوڈنٹ فیل ہو گئے ہیں اگر ان کو پارٹنر، لائف پارٹنر صحیح نہیں ملا۔ اور تیسری دعا یہ تھی کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کرے، بس یہ دعا کا مجھے انتظار ہے فار 85 ایئرز آئی ایم ویٹنگ فار دس دعا ٹو بی ایکسپٹیڈ۔ تم مجھے شہادت کی دھمکی دے رہے ہو جو 85 سال سے شہادت کا انتظار کر رہا ہوں۔ मौलाना भी फस्तो में रब्बिल काबा का, ये अली का बेटा भी है, अली का शागिर्द भी है। तो अब इसमें जो जुमला लेके मुझे मजलिस को इख्तिताम तक पहुंचाना था वो ये था, का बीवी, बीवी अगर अच्छी ना हो, इतने ब्रिलियंट और जीनियस लोगों की लाइफ मैंने तबाह होते देखी है, और बीवी अगर अच्छी हो तो इतनी कामयाबियां लोगों को हासिल करते देखा कि जैसे खुद आगा कोई नहीं का। या ऐसी बीवी चाहिए थी जो मेरे इस इश्तिहाद के मिशन में मेरा साथ दे, तो कैसा साथ दिया कि आगा कोई मुश्तहिद नहीं बने, मर्जे बने, मर्जे नहीं बने, उस्तादुल फुकहाए वल मुश्तहिदीन करार पाए। आज सारी शिया दुनिया में जितने मुश्तहिद हैं वो सब या आगा कोई के शागिर्द हैं या शागिर्दों के शागिर्द। बीवी अच्छी थी तो बीवी का अच्छा होना, शौहर को भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन फिर ये मौजू आज अब नहीं आ सकता, वक्त बहुत गुजर गए। बीवी का अच्छा होना इंसान की आम जिंदगी में कितना फायदेमंद हो, चाहे दुनियावी आपका कोई टारगेट हो और चाहे दीनी टारगेट हो। तो अच्छी बीवी की अहमियत को समझना है तो बस एक जुमले से समझ लें, आका हुसैन सरकार सैयदुल शुहदा सरदार जवाना ने जन्नत, ये जुमला कहा करते थे, जिस घर में रबाब ना हो वहां मेरा दिल नहीं लगता। रबाब ये कहा जाता है सिर्फ बात को समझाने के लिए कि आइम्मा मासूमीन में भी सबसे ज्यादा इबादत गुजार और मुत्तकी इमाम इमाम हुसैन। अब ये लफ्ज मासूमीन की शान के भी खिलाफ, लेकिन बात समझाने के लिए, जितना आदमी सोबर होता जाता, जितना आदमी मुत्तकी होता जाता, उतना ही वो अपनी जबान पे कंट्रोल करता है, जो चीजें आम आदमी कह देते हैं वो नहीं कहता। अभी भी की तारीफ मजमा आम में, लेकिन रबाब एक ऐसे तोहफे खुदा का नाम था कि आका हुसैन ने मजमे में कहा रबाब, दिल नहीं लगता, हुसैन कह रहे उस घर में मेरा दिल नहीं लगता जहां रबाब हो सकीना ना। जिहाद एक करबला में हुसैन तो इमाम है, वो तो खैर वो तो आगा खोई थे, अपनी तमाम तर अजमत के बावजूद एक गैर मासूम, वहां तो उनको जरूरत थी, हुसैन को जरूरत नहीं है, लेकिन हुसैन करबला के मैदान में बताया कि इन तमाम पर्सनैलिटीज का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हुसैन के जिहाद के लिए। हुसैन अकेला भी काफी, आज शब्बीर पे क्या आलम तनाई है फिर भी हुसैन काफी, लेकिन इन लोगों के रोल की अहमियत बताना थी, क्योंकि हमारे और आपके लिए आज की दुनिया में जंग करना, जंग नहीं दुनिया का मुकाबला करना, टेम्पटेशन को फेस करना, शैतान से लड़ना, हमारे और आपके लिए अकेले मुमकिन नहीं है जब तक ये शख्सियतें साथ ना हो। कौन? बीवी और घर वाले। ये हुसैन को बताना था, हर एक ने मशवरा दिया हुसैन करबला जाओ तो औरतों को लेकर न जाओ, हुसैन ने कहा इनके बगैर मेरा जिहाद मुकम्मल नहीं। और उसमें खास तौर पर रबाब का रोल इस एतबार से मैं बहुत अहम करार देता हूं कि जो जुमला मैंने शब आशूर शहजादा अली असगर की मजलूमियत बयान करते हुए अर्ज किया था, वही जुमला कि रबाब ने खुद तो वो इम्तिहान दिया जो बाकी सब बीबियों ने दिया, रबाब की भी चादर छीनी, रबाब के भी बाजू में रस्सी बंधी, रबाब ने भी रास्ते में कोड़े खाए, रबाब भी कैद खाने में एक साल रही। वो इम्तिहान तो रबाब ने दिया ही जो हर बीबी ने दिया, लेकिन साथ में रबाब ने यह इम्तिहान भी दिया कि रबाब का शशमाहा अली असगर, रबाब का ही बेटा है ना, मैदान करबला में वो जिहाद करके दिखाया जो अकबर और अब्बास का भी जिहाद नहीं था। मैं नऊज़ुबिल्लाह तौहीन नहीं कर रहा किसी मुजाहिद की, दिखाइए तारीख में लाके दिखाइए करबला में कौन ऐसा मुजाहिद है जिसके जिहाद ने यजीदियों को रुला दिया हो। ना अकबर नजर आएंगे, ना अब्बास, ना कासिम, सबकी शख्सियतें इतनी अजीम, लेकिन असगर करबला का वो कमसिन मुजाहिद जो हुसैन की सच्चाई का भी इतना बड़ा सबूत और दलील बनी कि आज भी अगर कोई गैर मुस्लिम मरसिया लिखता है तो पहले अली असगर और यजीदियों को रुलाया। लेकिन रबाब को तो यह फख्र भी है कि अल्लाह ने रबाब को दो औलादें दी थी, दोनों ने ऐसा जिहाद किया। एक तरफ असगर ने ऐसा जिहाद किया, दूसरी तरफ सकीना। सकीना भी तो रबाब ही की बेटी है ना। आका हुसैन की एक बच्ची कैद खाने में शहीद हुई है। अरब दुनिया के लोग उसको रुकैया कहते हैं, इंडिया और पाकिस्तान में उनको सकीना कहते हैं। सकीना बचपने का नाम है, रुकैया शहादत के मौके का नाम। जब पैदा हुई तो बाप के दिल को इतना सुकून पहुंचाया कि बाप ने नाम सकीना रख दिया। असली नाम तो फातिमा है, सकीना यानी सुकून तस्कीन। जब पैदा हुई और जब मरने के करीब थी तो इतना रोती थी जिंदाने शाम में कि शाम के लोगों ने नाम रख दिया रिक्कत पैदा करने वाली, रुलाने वाली, रुकैया। कैद खाने में कौन कौन है शाम के आम आदमियों को तो नहीं मालूम ना, एक एक का नाम। इसी तरह से तस्किरा होता है। अच्छा वो कैदी जिसके गले में तौक है, अच्छा वो बीवी जिसने दरबार में खुतबा दिया है, अच्छा वो बच्ची जिस दिन और रात रोती रहती है जिसको अरबी में कहेंगे वो रुकैया। लेकिन इस रोने के जरिए से सकीना ने इतना इनकलाब बपा किया शाम में कि सकीना की शहादत के बाद यजीद को अहले बैत को रिहा करना पड़ा। रिवायतों में यह कि करबला के बाद से सकीना का एक ही तरीका था, वो ये था कि सारा दिन रोती रहती थी, आधी रात तक रोती रहती थी और उसके बाद जाके सोती थी चंद घंटे रात के। और जब तक सकीना जाग रही है और रो रही है, सारे अहले हरम जाग रहे हैं और सकीना को अपने घेरे में लेके मातम कर रहे हैं। जिंदाने शाम में भी सकीना का यही तरीका कर रहा, दिन और रात गुजर रहे हैं। नन्नी बच्ची सारा दिन रोती है, आधी रात के करीब जब थक के लेट जाती है, नींद आती है, फिर सारी बीवियां लेट जाती। आज भी यानी नौ सफर का दिन गुजर के शब दस सफर। अब कुछ तारीखों में इख्तलाफ है, मैं यहां के एतबार से बात कर रहा हूं, अल असर इस्लामिक सेंटर के कैलेंडर के एतबार से। नौ सफर का दिन भी गुजरा, सारा दिन सकीना रोल, आधी रात तक रोई, फिर जाके बिस्तर पे लेट गए। बिस्तर क्या, वही जिंदाने शाम की नर्म या जिंदाने शाम की गर्म या ठंडी जमीन। अब इधर सकीना लेट गई, इधर सारी बीवियां लेट गई। चौदह चौदह सोलह सोलह घंटे रोने वाली सकीना थकन से चूर होती है, रो आंख लग गई, सारी बीबियां सो गई। इधर सकीना की आंख लगी, इधर सकीना फौरन उठ के बैठ गई, घबरा के चारों तरफ देखा, दोबारा एक मरतबा रोना शुरू किया, बाबा मुझे छोड़ के कहां चले गए। जैनब तो सकीना की आहट में बेदार होती है, एक दौड़ता आंख खोली, सकीना बेटी ये आज क्या हो गया, तुझे पता है तेरा बाबा करबला में रह गया और तू इस वक्त सो जाती थी, दोबारा क्यों उठ गई। कहा फूफी अम्मा मैं उसकी बात नहीं कर रही, अभी मैं सोई थी तो ख्वाब में मुझे मेरा बाबा नजर आया, लेकिन बाबा अकेला नहीं था, मेरे साथ अपने साथ मेरी दादी फातिमा को लेके आया था। मैंने बाबा को सलाम किया और कहा बाबा आप मुझे छोड़ के कहां चले गए, देख तेरे बाद मैंने कितने मजालिम बर्दाश्त किए। बाबा ने कहा सकीना बेटी मैं इसीलिए तेरे पास आया हूं, आज तू हमारे पास आने वाली, तेरी दादी फातिमा तुझे लेने के लिए आई है, सकीना चलने की तैयारी कर ले। फूफी अम्मा अभी तो मेरा बाबा मुझे लेने आया था, कहां चला गया। बस जैनब ने जुमला सुना, समझ गई सकीना जाने वाली है, घबरा के आवाज दी, अय कुलसूम हो, अय कुबरा हो, अय रबाब हो, अय फरवा हो, अय लैला हो, अय फिजा, जरा जल्दी से बेदार हो जाओ। बीबियां घबरा के उठी, शहजादी खैरियत तो है, कहा सुनो मेरी बच्ची क्या कह रही है, ऐसा लग रहा है मेरी सकीना मुझे छोड़ के जाने वाली। बीबियों ने जो ख्वाब सुना तो सब समझ गई, सकीना को घेरे में लेके बैठी, एक बार फिर मातम शुरू हो गया। बराबर ही में तो यजीद का महल है, अब वहां यजीद का भी यह तरीका, आधी रात तक वो जागता रहता है क्योंकि कैद खाने से रोने की आवाज आती है, रात के अंधेरे में नींद नहीं आती, आधी रात के बाद वो भी बिस्तर पे लेटता, फिर उसे नींद आती है। अब जो एक बार मातम दोबारा शुरू हुआ, यजीद की आंख खुल गई, घबरा के उठ के बैठ गया, कहा ये बच्ची जो मुझे आधी रात तक नहीं सोने देती है, क्या आज मुझे बाकी रात भी नहीं सोने देगी? कनीज़ गुलाम दौड़े दौड़े आए, आका खैरियत तो है? कहा देखते नहीं हो बच्ची रो रही, उसके रोने की वजह से मेरी नींद उड़ गई। कनीजों से कहा जाओ और जाके उस बच्ची को खामोश कराओ। कनीजों ने हाथ जोड़ ली, कहा आका दुनिया का हर काम कर सकते हैं, उस बच्ची को खामोश नहीं करा सकते। यजीद ने कहा कि यूं ना माने सख्ती करो। कहा कैसे सख्ती करें? अरे उसे तमाचे मारते हैं वो और रोती है, बाबा अपनी सकीना को बचा ले। अरे उसे कोड़े मारे वो और रोती है, चचा अब्बास जरा आके देख तेरी सकीना पे क्या गुजर रही है, कैसे रोकें? तो यजीद घबरा के कहता है तो आज की सारी रात मेरी जागते हुए गुजरेगी। एक बूढ़ी कनीज खुश है साहिब औलाद, कहा यजीद एक चीज समझ में आती, वो बच्ची बार बार कह रही है बाबा बाबा बाबा, उसके बाप का कटा सर तेरे खजाने में है ना, ये कटा सर भिजवा दे, शायद इसे देख के बच्ची को सुकून आ जाए और वो चुप हो जाए। यजीद ने कहा अच्छा ये सर लेके जाओ, और इधर ये सर तश्त पे रख के ले जाया गया। उधर सकीना बीबियों के हलके में बैठी है, जिंदाने शाम है, आधी रात का वक्त है, हाय बाबा कह रही, एक मरतबा खड़ी हो गई और कैद खाने के दरवाजे की जानिब जाने लगी। जैनब ने घबरा के कहा बेटी कहां जा रही हो? कहा मुझे बाबा की खुशबू आ रही है, ऐसा लग रहा है मेरा बाबा दरवाजे पे आ रहा। और एकदम दरवाजा खुला, जैनब ने पलट के देखा, कनीजे एक तश्त लेके आ रही है जिसमें ऊपर कपड़ा पड़ा है खान, जैनब के सामने रख दिया। जैनब ने हैरान होकर पूछा आधी रात को ये क्या? कहा यजीद ने भिजवाया है, शहजादी जरा देखिए। इधर जैनब ने कपड़ा हटाया और सारी बीबियों की आंखों के सामने मेरे मजलूम आका फातिमा के लाल हुसैन मजलूम का कटा हुआ सर नजर आ रहा। अरे हुसैन का कटा सर नजर आया, बीबियों पे क्या गुजरी? वही जो हम और आप करते हैं। पहले तो सारी बीबियां अपनी जगह से खड़ी हो गई, सबने कटे सर का रुख किया, पहले तो सलाम किया, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका या अबना रसूलल्लाह, आका इन कनीजों को सलाम लीजिए। और उसके बाद जैनब आगे बढ़ी, कटा हुआ सर उठाया, सकीना की गोद में रखा, ले सकीना तेरा बाबा आ गया है। सकीना झुकी, बाप के होठों पे होंठ रखे। उलमा ने कहा आज तारीख उल्टी हो गई, हमेशा हुसैन झुक के सकीना का बोसा लेते थे, आज बच्ची झुक के बाबा का बोसा लेती है और फरियाद करती है बाबा जरा देख मेरे रुखसार पे तमाचों के निशान, जरा देख मेरे जख्मी कान, मगर ये कहते कहते बच्ची रुक गई। कहा बाबा मैं अपनी फरियाद तो कर रही हूं, तू तो मुझसे ज्यादा जख्मी नजर आ रहा। अरे तेरा कटा हुआ गला, अरे तेरे जख्मी होंठ, हाय मेरा बाबा। और एक बार सकीना की आवाज आना बंद हो गई, जैनब घबरा गई, सज्जाद बेटा देख तो मेरी बच्ची पे क्या गुजरी है। मेरा मजलूम आका आगे बढ़ा, सकीना के बाजू को थामा, खुदा किसी जवान भाई को अपनी छोटी बहन की हालत ना दिखाए। मेरे मजलूम आका सज्जाद ने छोटी बहन का हाथ थामा और पलट के एक जुमला का, फूफी अम्मा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, हाय मेरी बहन मुझे छोड़ के बाबा के पास पहुंच गई। गौसाला को बुलाया गया कि इसे गुस्ल मैयत तो दे दे, कफन नहीं था, गुस्ल मैयत तो दे दे। गौसाला चीखे मारती भी बाहर निकली, अरे बीबियों इस बच्ची पे तुमने कितने जुल्म किए हैं, सारा बदन सर से पैर तक जख्मों से चूर चूर जगह जगह खून नजर आ रहा। और जैनब क्या क्या बताएं, वही जला हुआ कुर्ता जो शाम गरीबा, सकीना का कुर्ता आखिरी खेमे की आग में जला था, उसी जले हुए कुर्ते में दफन कफन दिया। सैयद सज्जाद सकीना का लाशा लेके आगे बढ़े, जिंदाने शाम की कब्र में उतार रहे हैं कि एक मर्तबा कब्र से फातिमा ज़हरा की आवाज आ रही है, सज्जाद ला मेरी बच्ची को मेरे हवाले कर दे, अपनी सकीना को लेने के लिए फातिमा आई।
اجرکم اللہ اجرکم اللہ. پروردگارہ حسین کی اس معصومہ اس مظلومہ یتیمہ سکینہ بنت الحسین رقیہ بنت الحسین کے ان مصائب کا واسطہ اور زندان شام کے میرے اس مظلوم امام کا واسطہ جس کے ہاتھ میں اپنی ننی بہن کا لاشا. آج کی مجلس سننے والے تمام مومنین اور مومنات کو ان کی اولادوں کو ان کے گھروں کو ان کے گھر والوں کو اور آفت و پریشانی سے محفوظ فرما. خداوندہ اس عظیم مقصد کے لیے جو قربانیاں دی گئی ہیں ان قربانیوں کا واسطہ ہمیں بھی سیرت اہل بیت اور شہداء کربلا کے مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے مرحومین خصوصاً مرحوم علامہ جاوید جعفری صاحب کو آل اللہ مقامہ کو جنت میں اعلی علیین میں اہل بیت اطہار سے ملحق فرما. ہمارے تمام بیماروں کو خصوصاً دنیا بھر میں کورونا کے جو بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ عطا فرما اور ان مظالم کے انتقام کے لیے حسین کے وارث و بیٹے امام زمانہ کے ظہور میں تاج فرما. ماتم حسین